ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवरणेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणदयम् जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। यह सम्य ज्ञान चंद्रिका जीव कांड है, जो पंडित टोडरमल जी ने लिखी हुई है। मूल ग्रंथ है गोमटसार, जिसके रचयिता है आचार्य नेमिचंद, सिद्धांत चक्रवर्ती उनको कहते हैं। सिद्धांत जो है ना षटखंड, तो उनको सिद्धांत कहते हैं, और उसके वो षटखंडाधिपति जैसे कहते चक्रवर्ती, षटखंड को जीतने वाले वो चक्रवर्ती है। वैसे षटखंडागम नाम का अपना जो मूल ग्रंथ है उसको जानने वाले ये सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाते हैं। तो यहाँ हम योग का प्रकरण देख रहे हैं। हमने देखा था कि यहाँ जीव कांड में जीव की 20 प्ररूपणाएं बताई है। ये 20 प्ररूपणा याद है ना, उनको गुणस्थान और मार्गणास्थान ऐसे दो भागों में विभाजित किया था, और मार्गणास्थानों में 14 मार्गणा और अन्य 5 प्ररूपणाओं को लिया। कौन कौन सी वो 14 मार्गणा? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, सम्यक, संगी, भव्य और संगी और आहार। तो इस तरह से उसमें से योग मार्गणा का जो प्रकरण है उसमें हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो योग में जब हम देखते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीवों को 3 प्रकार के योग होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। और जो द्विंद्रिय से आगे के जीव है असंगीत, उनको वचन योग और काय योग, 2 योग होते हैं। और एकेंद्रिय योग को एकमात्र काय योग पाया जाता है। उसके भेदों की चर्चा हम देखते हैं। यहाँ पर 15 प्रकार के योग है टोटल। मन के 4 प्रकार के योग है, वचन के 4 प्रकार के हैं, और काय योग 7 प्रकार के हैं। मन के योग हमने कल देखे थे, वो छोटे बोर्ड पर लिखे हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय यानी सत्य असत्य दोनों, उसको उभय कहते हैं, और दोनों ही नहीं उसको अनुभय कहते हैं। वचन योगों के भी यही नाम है। काय योगों की हमने वहां लिस्ट लिखी है, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रेक, वैक्रेक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमान काय योग। अभी बहन का प्रश्न था कि ये मिश्र क्या होता है, किसी ने पूछा ना, अभी है क्या पूछने वाले यहाँ पर मिश्र का योग? हाँ, आपने पूछा था मिश्र का योग क्या होता है। देखिए, विग्रह गति के बाद जीव शरीर ग्रहण करता है, उसकी पर्याप्ति शुरू हो जाती है। जीव मरता है, एक गति से दूसरे गति में, दूसरे भाव में चला जाता है, तो वहां नया शरीर ग्रहण करता है। कोई वहां रेडीमेड शरीर नहीं कि वहां उसकी जाके अंदर घुस जाए। यहां का शरीर तो यहीं छोड़ देता है। कारमान तेजस शरीर तो उसके बने रहते हैं, परंतु जो औदारिक शरीर है, मनुष्य तिरियंचों के औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर पूरा का पूरा यहाँ छोड़कर जीव अन्यत्र गमन कर जाता है। फिर दोबारा वो मनुष्य तिरियंच होगा या देव होगा या नारकी होगा, कहीं भी जन्म ले जाए, तो वहां वो वहां के परमाणु, वहां के शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर रूप से बनाता है। तो ये सारा जो कार्य है उसके लिए वहां जो कोई, उसमें जो कोई डेवलपमेंट होती, कोई शक्ति उत्पन्न होती, उसको पर्याप्ति कहते हैं। तो ये पर्याप्ति जब पूर्ण होती है, छो पर्याप्ति है, उसमें शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक उसको औदारिक या वैक्रेक मिश्र काय योग कहा जाता है। क्योंकि पहले कारमान था और बाद में वो औदारिक होने को टाइम है अभी, तो ये जो मिश्र अवस्था है उसकी, उस पर मिश्र काय योग कहना। आहारक शरीर बनाते उसमें भी वो आहारक मिश्र होता है, वैक्रेक शरीर बनाते वहां भी वैक्रेक मिश्र होता है, और औदारिक वालों को औदारिक मिश्र होता है। वो कब होता है? तो जहां जन्म लेना है वहां पहुंचते ही, कोई जीव सीधा एक यानी एक समय में पहुंचता है बिना मोड़ लिए, उसके उसी समय में औदारिक मिश्रक आयोग या वैक्रियक मिश्रक आयोग शुरू हो जाता है। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर वैक्रियक कायोग या आहार सॉरी औदारिक कायोग यथा योग्य वो हो जाता है, उसको कहते हैं पर्याप्ति पूरी होने पर। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर औदारिक या वैक्रियक कायोग चालू हो जाता है, नया शरीर संबंधी, नए शरीर संबंध, पुराना सब छोड़ दिया उसने, अब नए गति में गया, उसकी नई आयु चालू हो गई है, तो वहां का जो कोई योग होगा वही उसको होगा। देव और नरक में जाने वालों के तो वैक्रियक मिश्र और वैक्रियक का योग होगा, मनुष्य और तिरंचों में जन्म लेने वालों के पहले औदारिक मिश्र होगा, बाद में औदारिक का योग होगा। इतनी बात सरल है ना। हाँ हाँ, आपको कहना है कि रास्ते में कौन सा योग होता है, तो सीधा एक समय में पहुंचने वाला डायरेक्ट औदारिक मिश्र होता है। एक मोड़ या दो मोड़ या तीन मोड़ सहित जाने वाले जो जीव है तो उनके वहां कारमाण का योग होता है, वहां कर्म का ग्रहण है, कर्म का बंध चल रहा है, परंतु वहां औदारिक या वैक्रियक शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं है, मोड़े वाले को मोड़ के पहले पहले यानी टर्न लेने के पहले पहले, अंतिम टर्न के बाद वो मिश्र का योग चालू हो जाता है। तब तक कारमाण का योग वो सबको होगा ही, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई सीधे गति से जाएंगे बिना मोड़ के तो उनके बिना कारमाण का योग के डायरेक्ट उनके नया शरीर का ग्रहण शुरू हो जाएगा। उसमें भी हमने देखा था वो अलग अलग शरीर नाम कर्म का उदय वहां पाया जाता है, अभी अपना यहां प्रकरण नहीं चला, परंतु नाम कर्म के जो उदय है अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग नाम कर्मों के उदय शुरू होते हैं, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अपना ये विषय योग संबंधी है तो हम उतने तक ही सीमित रखेंगे, जब कभी कर्म की बात आएगी तो उसकी चर्चा होगी। अब यहां जो हमने ये सात प्रकार के का योग देखे हैं तो कहां कहां होते हैं, हमने देखे अभी जो मिश्र का योग कहां है, औदारिक मिश्र की बात करेंगे तो विग्रह गति में है, कौन से विग्रह गति में नहीं, कारमाण का योग विग्रह गति में मोड़ वाले के है, और औदारिक मिश्र शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक उसके एक समय पहले तक औदारिक मिश्र का योग है। औदारिक का योग कब होता है, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात। जब किसी के पूछेंगे औदारिक मिश्र का योग कौन से जीवों को होता है तो हम कहेंगे अपर्याप्तों को होता है। तो अपर्याप्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक है लब्धि अपर्याप्त और एक है निर्वृत्ति अपर्याप्त, यानी जिनकी पर्याप्ति पूरी होने वाली है उनके जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है उसके पहले पहले उनको कहते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त, यानी उनकी पर्याप्ति नियम से पूरी होने वाली है परंतु अभी चल रहा है कार्य, पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। और लब्धि अपर्याप्त जीव ऐसे होते हैं उनकी एक भी पर्याप्ति पूरी ही नहीं होती है, उससे पहले वो मर जाते हैं, उनमें योग्यता ही नहीं है कि पर्याप्ति उनकी पूर्णता हो गई, लब्धि अपर्याप्त। तो ये लब्धि अपर्याप्त जीवों के कौन सा कायोग होगा, औदारिक मिश्र होगा कि वैक्रियक मिश्र होगा, बोलो। लब्धि अपर्याप्त जीवों को औदारिक मिश्र कायोग होगा,
नहीं होगा,
मृत्यु होती है, औदारिक कायोग नहीं होगा, तो औदारिक मिश्र होगा कि वैक्रियक मिश्र होगा, वो भी नहीं होगा, तो कुछ तो होगा कि नहीं, कारमाण कायोग तो विग्रह गति में होता है। पर्याप्ति शुरू होने से समय से लेकर औदारिक मिश्र शुरू होता है, वो पूरा होता कि नहीं उसकी बात नहीं है, तो लब्धि अपर्याप्त उनको कौन सा होगा, औदारिक मिश्र होगा। तो मेरा सवाल है वैक्रियक मिश्र हो सकता है कि नहीं हो सकता, किसी लब्धि अपर्याप्त को वैक्रियक मिश्र कायोग होगा कि नहीं होगा, आप क्या कहते महेंद्र भाई, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वैक्रियक मिश्र किसके हो जाए होगा, देवों के और नारकियों के, जब तक उनकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक, हाँ तो वो पर्याप्त ही है, तो उनमें लब्धि अपर्याप्त होते ही नहीं है। यही बात मैं यही प्रश्न का उत्तर मैं चाहती थी कि देवों में और नारकियों में लब्धि अपर्याप्त जीव नहीं होते, वो पर्याप्त ही होते हैं, परंतु जब तक उनकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उनके वैकृत मिश्र का योग होता है। जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तो वैकृत का योग चालू हो जाता है। ये बात समझ में है मिश्र के बारे में? आहारक शरीर हो, वैकृत शरीर हो या औदारिक शरीर हो, वो जीव जो है उस शरीर वाले जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उस संबंधी मिश्र का योग है, और जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तो उस शरीर का वो पूर्ण जो है औदारिक वैक्रिय क्या आहार।
ऐसा जरूरी है कि अपर्याप्त अवस्था में ही मिश्र होता है?
अपर्याप्त अवस्था में ही मिश्र होता है। अब और औदारिक मिश्र कहाँ पाया जाता है, किसी को पता है? नहीं, वो मुनि अवस्था में वो आहार की बात है, केवली समुद्रात में। तो केवली समुद्रात चार प्रकार के है, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। तो कहाँ पर होगा औदारिक मिश्र? कपाट समुद्रात में, दूसरे समय का। पहला है दंड समुद्रात, ये दंडाकार ऐसे उसके आत्म प्रदेश फैलते हैं। दूसरा है कपाट समुद्रात, ऐसे आड़े फैलते हैं। उस अवस्था में औदारिक मिश्र का योग एक समय के लिए होता है, एक ही समय के लिए। उसके बाद प्रतर, लोकपूरण और फिर प्रतर, तीन समय के लिए कारमांड का योग होता है।
अभी आपने कहा ना कि अपर्याप्त अवस्था में मिश्र होता है, नारकी देवता तो अपर्याप्त होते नहीं, तो फिर उसको मिश्र नहीं होगा ना?
वहाँ वैकृत मिश्र होगा, लब्धि अपर्याप्त नहीं होते, परंतु वे निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं तो उनमें वैकृत मिश्र का योग पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? दोबारा, ये औदारिक मिश्र किसके होगा? मनुष्यों के होगा और तिर्यंचों के होगा। कब होगा? एक गति से दूसरे गति में गए हैं और शरीर धारण करना शुरू होगा, पर्याप्ति शुरू हुई है। लब्धि अपर्याप्तों की पर्याप्ति शुरू तो होती है, पूर्ण नहीं होती, तो उनके औदारिक मिश्र ही है। अब जो पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं उनके पर्याप्ति तो पूरी होती है, तो जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तब औदारिक का योग चालू हो जाता है। जब सभी पर्याप्ति पूरी होती है तब वो मनोयोग और वचन योग भी शुरू होता है, क्योंकि वो भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति पूरी होने के बाद उस संबंधी योग चालू हो जाता है। यानी मनोयोग और वचन योग किसके होंगे? तो पर्याप्त जीवों के होगा, वो भी पर्याप्ति पूरी होने पर। अपर्याप्त जीवों को मनोयोग नहीं है और ना ही वचन योग है। इतनी बात ख्याल में आई? क्योंकि हम इसके बाद वो गुणस्थानों में घटित करने वाले हैं। लब्धि अपर्याप्तों के औदारिक मिश्र ही रहता है और औदारिक मिश्र का योग रहते हुए ही उनका मरण हो जाता है, फिर अन्य गति में चले जाते हैं। अब हो सकता है फिर दोबारा अपर्याप्त हो, फिर औदारिक मिश्र रहेगा उनका, ऐसे हो सकता है। लगातार औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र, ऐसा बहुत काल तक भी होगा। जिसको कहते हैं वो जीव आहारक रहता है। आहारक यानी क्या? सीधी गति से जाता है, रुजु गति से जाता है अन्य भव में, तो बीच में कारमांड का योग ही नहीं होता है, समझ में? एक भव से दूसरे भव में चले जाए सीधी गति से जाता है, रुजु गति से। वो पूर्व पश्चिम कहीं भी हो तो वहां वो जन्मता है, तो उसको कहते हैं आहारक ही रहता है। यानी शरीर के परमाणु का ग्रहण करने का कार्य बीच में रुकता नहीं है, क्योंकि बीच में कारमांड का योग नहीं है। ऐसे लगातार कोई आहारक 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 रहे, यानी इसका अर्थ क्या है? वो रुजु गति से ही जाता रहे, लब्धि अपर्याप्त तो होने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त तक जीव भी देखो, पर्याप्ति पूरी पहले भव के पहले समय से आहारक है ना। वो आहारक का अर्थ क्या है? शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा है, थोड़ा आराम तो करता होगा ना जब सोता है तब, ये लगातार चल रहा है उसका, नॉन स्टॉप। योग तो नॉन स्टॉप है, अनादि से है और तेरवे के अंत समय तक योग रहेगा। कर्म आहार जो है ना, वो मोड़ वाले को आहार नहीं है एक दो या तीन समय तक, मोड़ वाले को नहीं है। तो कोई हाँ, वहां पहुंचने पर आहारक शुरू हुआ उसका, यानी तब मिश्र का योग चालू। मोड़ वाले को अनाहरक मैक्सिमम तीन समय तक किसी के होगा तो होगा, कोई एक मोड़ वाला है वो एक समय तक अनाहरक, दो मोड़ वाला दो समय तक अनाहरक, तीन मोड़ वाला तीन समय तक अनाहरक, यानी वहां उसको कारमाण का योग है। कर्म का तो ग्रहण चल रहा है परंतु शरीर का ग्रहण नहीं है, ख्याल में आई बात? तो मेरा ऐसा कहना था कि जीव लगातार आहारक 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 रहे तो कितने काल तक रह सकता है, हमें विमला बेन को तो पता है। हाँ बोलो बे, नहीं मालूम, उसको कहते हैं सुच्चंगुलिया अंगुल के असंख्यात वे भाग, काल का माप क्षेत्र में बता रहे, क्या कहते हैं अंगुल, अंगुल यानी उंगली की जो कुछ चौड़ाई है उसका असंख्यातवा भाग, उसमें जितने प्रदेश है उतने समय, समयों में गिने तो कितने हो गए, उसमें असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उसपर्णी चली जाती है। सुच्चंगुल का असंख्यातवा भाग, अभी उंगली का असंख्यातवा भाग कितना छोटा होगा, उसमें कितने प्रदेश है उसमें हम काल गिन रहे, इसको कहते हैं क्षेत्र के माप से काल को गिनना। ये अंगुल इतना छोटा है तो लोक कितना बड़ा हो गए ना, तो उसमें कितने प्रदेश हो गए, तो यहां अंगुल के असंख्यात वे भाग में जितने प्रदेश है उतने हम समयों में गिनेंगे तो कितना समय है, असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, यानी इतने बार 20 कोड़ा कोड़ी सागर, असंख्याता संख्यात बार, इतने काल तक लगातार आहारक 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 रहे, ऐसा हो सकता है किसी जीव हमें क्या बिना मोड़ के जन्म ले, इसके ज्यादा इससे ज्यादा नहीं, फिर उसको मोड़ वाला जन्म मिलेगा बीच। ये तो क्या है, भगवान ने तो सब कुछ जाना है ना, केवल ज्ञान में आज सुना ना, कुछ नहीं जानने की फैसिलिटी नहीं है, तो करना नहीं और पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा जिसको केवल ज्ञानी होना है, तब तो नहीं कह सकेगी कि इसकी क्या आवश्यकता है, वहां बिना आवश्यकता सब कुछ जानना पड़ता है। अभी जो कुछ आपको नहीं जानने की फैसिलिटी है आप भोग लो। देखो अभी हम देखते हैं इसको गुणस्थानों में भी घटित करेंगे, ये कहां होता है कैसे होता है उसको पहले देख रहे हैं। काय योग की बात चल रही है, औदारिक काय योग किसके होगा, औदारिक काय योग पर्याप्तों को होगा, अपर्याप्तों में हमने देखा है मिश्र होता है, पर्याप्तों में औदारिक काय योग होता है, तो पर्याप्तों के गुणस्थान कौन से, अभी औदारिक काय योग किसके होगा, मनुष्य और तिर्यंचों के होगा, देव और नारकियों के तो नहीं होता है, तो पर्याप्तों के होता है, तो पर्याप्त मनुष्य और तिर्यंचों में गुणस्थान कौन कौन से थे, पहले हम तिर्यंचों की बात करें, तिर्यंचों में गुणस्थान कौन से है बोलो, एक से पांच, बराबर। अब मनुष्यों में पर्याप्तों में गुणस्थान कितने हैं, एक से 14 के 13, हाँ क्यों, हाँ 14वें जो है वो अयोगी है, औदारिक शरीर है परंतु औदारिक काय योग नहीं है, क्योंकि 13वें गुणस्थान वाले भी आहारक है, कौन से आहारक, नो कर्म का, हाँ वो कवलाहार वाले नहीं, औदारिक परम औदारिक शरीर के परमाणु हर समय ग्रहण करते हैं एक्सेप्ट वो तीन समय कारमाण का योग वाले, संयोग के लिए जब समुद्रात करते हैं तब वो तीन समय तक अनाहारक रह सकते ना, वहां अनाहारक ही है क्योंकि वहां कारमाण का योग है, कर्म का ग्रहण वहां भी चल रहा है परंतु शरीर का ग्रहण तीन समय तक नहीं है, जब प्रतर लोकपूरण और प्रतर समुद्रात कर रहे हैं तब, क्यों, वहां कारमाण का योग है, उसको कहते वहां अनाहारक है, और 14वें वाले कैसे है, उनके तो योग ही नहीं है तो वे अनाहारक ही है। अब हमें यहां गुणस्थान घटित करने हैं, तो आहार औदारिक का योग कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होगा, ऐसा अगर हम पूछेंगे तो क्या कहेंगे, हम मनुष्य तिरंची की बात नहीं कर रहे, जनरल कथन पूछेंगे, तो कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होगा, एक से 13, ये बात ख्याल में आई, औदारिक का योग कहां से कहां तक है, एक से 13 गुणस्थान। अभी हम इंद्रियों की अपेक्षा से पूछेंगे, एकेंद्रियों के है कि द्विंद्रियों के है कि तीनद्रियों के, किसके है? अकेले पंचेंद्रियों के हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? एक से तेरह तो गुणस्थान हुए, आपका कहना है पंचेंद्रियों को होगा, तो द्विंद्रियों को कौन सा कार्य होगा? उनके कौन सा शरीर है? ये पृथ्वी का एक को कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है ना। निगोद को कौन सा शरीर है? औदारिक है ना। तो उनके औदारिक काय होगा कि नहीं निगोदों को? क्योंकि निगोदों में पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त भी होते हैं। निगोदों में भी अपर्याप्तों को हम औदारिक मिश्र कहेंगे, और जो कोई पर्याप्त है एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के, तिर्यंच सभी लेना उसमें, और मनुष्य भी लेना है, मनुष्य तो केवल पंचेंद्रिय होते हैं, तो उनके औदारिक कायोग होगा। जलकायिक जीवों के भी औदारिक कायोग है। देखो जो हम पंचेंद्रिय है मनुष्य या पंचेंद्रिय तिर्यंच है, उनके कितने योग है पर्याप्तों को? मनोयोग, वचन योग और कायोग। अब एकेंद्रिय जो पर्याप्त हो गए उनको कौन सा योग है?
औदारिक कायोग।
अकेला एक ही योग है औदारिक कायोग, और वो लगातार कितने काल तक चलेगा? जितनी उनकी आयु है पूरी लाइफ टाइम तक उनका एक ही योग चलेगा। परंतु पंचेंद्रिय है हम तो हमारा योग एक एक अंतर्मुहूर्त में पलटता है, हमारा एक ही योग कायम नहीं रहता, बहुत छोटे से अंतर्मुहूर्त में ये योग पलटता ही है। काय योग से वचन योग, वचन योग से मनोयोग, मनोयोग से फिर वचन योग, काय योग, ऐसे वो पलटना चलता है। परंतु एकेंद्रियों में एकमात्र काय योग ही है, तो उनके पलटने के लिए दूसरा योग ही नहीं, वहां वचन योग उनके है ही नहीं है। तो उनका जो पर्याप्त होने के बाद एकमात्र औदारिक का योग चलेगा, तो अधिक से अधिक कितने काल तक चलेगा? तो जितनी अधिक से अधिक आयु होगी उतना होगा। हाँ, पंचेंद्रियों में नियम से, द्विंद्रियों में भी वचन योग और काय योग में पलटना होगा, परंतु एकेंद्रियों में एक ही योग है तो वहां पलटना नहीं है। जैसे पृथ्वी काय की अधिक से अधिक आयु कितनी है? 22,000 वर्ष की, तो वहां तक उनके अकेला औदारिक का योग चलेगा। दूसरा एक प्रश्न अभी, क्या लगातार औदारिक का योग, औदारिक का योग, औदारिक का योग ऐसा रहेगा क्या? नहीं, किसी के जीव को, किसी जीव के, क्या प्रश्न पूछा? कोई एकेंद्रिय मरा, पृथ्वी काय का भी योग का योग था, वो मर गया, अब दूसरे भाव में चला गया। मान लेते कोई जल काय हो गया, फिर से पृथ्वी काय हो गया, तो उसका औदारिक कायोग का औदारिक कायोग ही रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा, औदारिक मिश्र हो जाएगा बीच में। परंतु ऐसा हो सकता है किसी का औदारिक मिश्र के बाद औदारिक मिश्र, फिर औदारिक मिश्र, फिर औदारिक मिश्र, फिर औदारिक मिश्र, क्यों? अपर्याप्त भवों में ही घूमता है लगातार, अपर्याप्त 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 चलता है। हमने देखा ना एक अंतर्मूर्त में 66,336 भव होते हैं, तो लगातार अपर्याप्त अपर्याप्त अपर्याप्त, तो उसके औदारिक मिश्र औदारिक मिश्र औदारिक मिश्र चलता है। ख्याल में आई बात? ऐसा कोई जीव होगा कि उसका वैकृत मिश्र और वैकृत मिश्र ही चलता रहे? क्योंकि किसी के वैकृत मिश्र अवस्था में मरण है ही नहीं, क्योंकि वो सारे पर्याप्त जीव है और उनकी लंबी आयु होती है, और वहां तो कोई कदली घात वगैरह की अवस्था है नहीं है। तो इस तरह से ही हमने योगों के बारे में देखा। अभी हमने औदारिक कायोग में गुणस्थान देखे, कौन से देखे? पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक हो गए। हाँ,
ये तेव का और वायु का है ना, जो दो उसमें वैकृत है, तो वो
अभी वैकृत की बात नहीं आई अपनी, औदारिक की चल रही है, औदारिक कायोग की बात चल रही है अभी अपनी। तो औदारिक और औदारिक मिश्र, अभी हम औदारिक मिश्र के गुणस्थान देखेंगे। औदारिक मिश्र किसके होता हमने देखा था? अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र है, अपर्याप्त अवस्था में। तो अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं, यानी उसमें क्या है, कौन से गुणस्थान में जीव मरकर उसी गुणस्थान के साथ अन्य भव में जाएगा? मिथ्या तो गुणस्थान में तो है ना, अनादि से उसी गुणस्थान में घूमता है जीव, तो उसका पहले गुणस्थान में मरकर वो अपर्याप्त अवस्था में भी पहला गुणस्थान रह सकता है। दूसरे गुणस्थान में मरण है कि नहीं है? हाँ, तो दूसरे गुणस्थान में भी मरकर वो अपर्याप्त अवस्था उसकी रह सकती है। तीसरा गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? मरण नहीं है, तो औदारिक मिश्र हो या वैकृत मिश्र हो, उन जीवों को तीसरा गुणस्थान नहीं होगा। यानी तीसरे गुणस्थान वाले को औदारिक मिश्र या वैकृत मिश्र नहीं होगा, ये बात ख्याल में आने जैसी है, वहां मरण नहीं है। इसलिए चौथा हो सकता है कि नहीं हो सकता, किस जीव के होगा? अकेले क्षयिक के होगा क्या? हाँ नहीं, औपशमिक में कब होगा बोलो, कैसे हो सकता है? देखो एक ऐसा नियम है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं होता, नियम। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरकर कोई जीव मनुष्य तिरंच में तो आएगा नहीं, बात सही ना। द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व में मरण होता है। द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व किसके है? जो मुनि है, अभिश्रेणी चढ़े चढ़ने वाले या चढ़कर उतरे हैं या अभी नीचे है। तो द्वितीय ऑप्शन में मरने वाला जीव कहां जन्म लेगा? नियम से देव में ही जाएगा। तो वहां औदारिक मिश्र होगा कि नहीं होगा? नहीं। तो औदारिक मिश्र अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व नहीं पाया जाएगा। तो औदारिक मिश्र अवस्था में जो चौथा गुणस्थान है, अभी कौन से रह गए? क्यों वेदक को क्यों छोड़ा? क्षयोपशम सम्यक्त्व हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्षयोपशम सम्यक्त्व से मरकर कोई जीव मनुष्य तिरंच में जन्म लेता है कि नहीं लेता? देखो छठे नरक के नारकी, छठे नरक तक के नारकी जो सम्य दृष्टि है और सम्य दर्शन के साथ मरकर मनुष्य में आते हैं, तो उनके औदारिक मिश्र अवस्था में चौथा गुणस्थान है कि नहीं है? हाँ। अभी जो देव वेदक सम्यक्त्व वाले मरकर मनुष्य में जन्म लेते हैं, उनका भी औदारिक मिश्र अवस्था में चौथा गुणस्थान। जो क्षायिक नहीं है ऐसे भी जीव आते हैं ना यहाँ पर, मनुष्यों में जन्म लेते हैं ना सम्यक्त्व के साथ, क्षायिक आएंगे तो वो तो बात है ही। और ऐसा भी है कृतकृत्य वेदक या क्षायिक जो भोगभूमि का मनुष्य बनता है या तिर्यंच, उसके भी औदारिक मिश्र अवस्था में चौथा गुणस्थान पाया जाता है। पर इसकी एक विशेषता है, औदारिक मिश्र में जिसको चौथा गुणस्थान है उसके स्त्री वेद होगे, पुरुष वेद होगा, फिर नमुसक वेद होगा। हाँ पुरुष वेद ही होगा, क्यों? सम्यक्त्व के साथ अभी वो जन्म लेता है तो स्त्री में नहीं लेगा। तो वैकृत मिश्र में जो सम्यक्त्व के साथ वैकृत मिश्र हो रहा है उसमें कौन कौन से वेद पाए जाएंगे? हाँ नरक में जाने वाले के नपुंसक वेद। हाँ सम्यक्त्व के साथ अभी जो नरक में जाता है, पहले नरक में जाता है तो उसके नपुंसक वेद, बाकी तो पुरुष वेद। अभी हमारे औदारिक मिश्र की बात पूरी होगी। औदारिक मिश्र में गुणस्थान कौन से देखे हमने? पहला, दूसरा और चौथा, और एक है अभी हमने उसकी कपार समुदाय की बात की, तेरवा गुणस्थान। एक समय के लिए औदारिक मिश्र अवस्था होती है वहां योगों की। अब औदारिक और औदारिक मिश्र हो गए, इसमें समझ में आई बात गुणस्थानों की। अब हम वैकृत की बात करेंगे। वैकृत का योग और वैकृत, पहले हम वैकृत मिश्र को देखेंगे क्योंकि अभी अभी हमने औदारिक मिश्र को देखा ना। तो वैकृत मिश्र यानी देवों में और नरकों में जन्मने वाले कौन कौन से गुणस्थान में जन्म सकते हैं? पहला, चौथा, दूसरे में मरकर नरक में नहीं जाते, पर दूसरे में मरकर देव में जा सकते हैं। नहीं समझे? दूसरे गुणस्थान की विशेषता है कि सासादन में मरने वाला जीव नरक में उत्पन्न नहीं होता। तो वैकृत मिश्र वाले को नरक गति में चौथा गुणस्थान नहीं होगा, वैकृत मिश्र वाले को। तो वैकृत मिश्र के साथ नरक में कौन कौन से गुणस्थान हो गए? पहला और चौथा, और देव में पहला, दूसरा और चौथा। ये बात ख्याल में? नहीं समझ में तो फिर पूछना।
दूसरा क्यों नहीं लिया
नरक में? दूसरा क्यों नहीं लिया ऐसा प्रश्न है, क्योंकि ऐसा नियम है। जैसे हमने देखा ना तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, वैसे नियम है दूसरे गुणस्थान के बारे में कि जिसका सासादन गुणस्थान में मरण होता है वो मनुष्य में तिर्यंच में या देव में जन्म लेता, नरक में नहीं जाता। नारकी जीव वहां सम्यक को प्राप्त करके प्रथमोपशम होकर वो सासादन में जा सकता है, सांसाधन के साथ नरक में कोई जन्म नहीं लेता। मिथ्यात्व में जाने के बाद वो जा सकता है, ये नियम है ऐसा। अब हमने वैकृत मिश्र देखा, वैकृत का योग किसके हो गए, देव और नारकियों के। गुणस्थान कितने, तीसरा है कि नहीं, क्यों नहीं है, मरण की कहां बात है। वैकृत का योग पूरे एक एक सागर, दो दो सागर, तैतीस सागर तक वैकृत का योग रहेगा ना उनके, यानी वो मनोवचन का योग में पलटना होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे आप। देखो वैकृत मिश्र तब है जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, उसके बाद क्या होगा, वैकृत का योग होगा, फिर उनका मनोयोग वचन योग का योग पलटता रहेगा। तो वैकृत का योग वाले को तीसरा गुणस्थान हो सकता है कि नहीं वहां पर। नारकी जीव चारों ही गुणस्थानों में पाए जाते हैं, वहां जाने के बाद कोई सम्यक्त्व भी प्राप्त करे, कोई सासाधन में भी आवे, कोई तीसरे गुणस्थान में भी जाए और कोई मिथ्या तो भी बना रहे। असंख्यात असंख्यात जीव है प्रत्येक गुणस्थान में, वहां सम्यक दृष्टि भी असंख्यात है, किसमें, प्रत्येक नरक में। नहीं मालूम नारकी कैसे संयोगों में होंगे, हम तो पहले क्या करते हैं, पहले संयोग जरा ठीक ठाक करेंगे, वो सम्यक तो क्या तो होता रहेगा, अपना स्वभाव है ना, वो कहां चला जाएगा। तो पहले किसकी पड़ी हमको, संयोगों की पड़ी। अपना स्वभाव अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है, उसकी क्या चिंता करना है, पहले संयोगों की चिंता करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो वहां नरक में भी असंख्यात समय दृष्टि नारकी है। तब तो यहां देखते अभी हम, ये तो वैकृत का योग समझ में आते हुए, वहां गुणस्थान कितने हैं नरक में, चार, और देवों में, देवों में भी चारों गुणस्थान है। अब ये वैकृत की बात, अभी आहारक की, आहारक और आहारक मिश्र। आहारक का योग किसके होता है, छठे गुणस्थान। देखिए मुनियों की ऐसी बात है, जो मुनिराज है भावलिंगी संत छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, तो उनके ऐसी विशुद्धि के कारण सातवें और आठवें वालों को आहारक शरीर नाम कर्म नाम की प्रकृति का बंध होता है। आहारक और आहारक अंगोपांग आदि प्रकृति बनती है, जिनके ऐसी प्रकृति बनती है, ऐसे जीव जब छठे गुणस्थान में है और उन्हें कोई शास्त्र संबंधी प्रश्न आता है या कोई तीर्थों की वंदना करने का उनको विकल्प आता है, तो उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण सफेद पुरुषाकार सप्त धातु रहित स्वच्छ ऐसा पुतला निकलता है, उसको आहारक शरीर कहते हैं। तो जीव के प्रदेश मूल शरीर में भी है मुनिराज के, और जो गमन कर अन्यत्र जाता है शरीर उसमें भी वो पूरा ही, क्योंकि आत्मा के तो खंड नहीं होते, एक अखंड है ना, हाँ नक्षत्र तो ये अखंड आत्मा उसमें भी बना रहता है। देखो देव भी विक्रिया करके आते हैं, विक्रिया करके हजारों की सेना भी बनाते, तो सब में एक ही आत्मा है सब में फैला हुआ। ऐसे दिखने में इतनी सारी सभा है, किसी एक ने विक्रिया की और ऐसी सभा बनाई, तो उसमें आत्मा जीव एक ही है और विक्रिया करके इतने पृथक विक्रिया के द्वारा उसकी इतनी बन सकते। यहां तो बात है कि ये अपनी योग की बात चल रही है, वो तो तीर्थंकरों, देखो ये सौधर्म इंद्र भी आते हैं ना पंच कल्याणकों में, तो इंद्र महाराजा वहीं पर विराजमान है और विक्रिया करके दूसरा शरीर यहां भेजते, वहां सिंहासन खाली नहीं छोड़ते अपना। तो 170 तीर्थंकरों के इसमें चले जाएंगे, तो अलग अलग इतने रूप बना के इतनी जगह चले जाएंगे। चक्रवर्ती की भी होती है। तो ये हमने औदा वैकृत कायोग की बात देखी, वहां गुणस्थान चार देवों में भी और नारकियों में भी। आहारक की बात चल रही थी, आहारक पहले आहारक मिश्र होगा, अंतर्मूर्त के बाद वो आहारक कायोग हो जाएगा। तो आहारक मिश्र में तो किसी का मरण नहीं होता, ये उसकी एक विशेषता है। जैसे हमने अभी देखा औक्षणी समित्व के काल में मरण नहीं होता, वैसे आहारक मिश्र जो है उस काल में मरण नहीं होता, बाद में आहारक का योग हो जाता है, तो भले वहां एक समय में भी मरण हो जाए।
आहारक शरीर कितने गुणस्थान तक बांध सकते हैं,
आपका प्रश्न है आहारक शरीर नाम कर्म कितने गुणस्थान तक बांध सकते हैं, अकेले सातवां और आठवां और उदय छठे में, दो ही गुणस्थानों में उसका बंध होता है, सातवां और आठवां। ना ना ना, देखो जिसने प्रकृति बांधी है उसको जरूरत नहीं कि उसका उदय आए, ये जरूरी नहीं है। आपके पास मोबाइल है, जरूरी है कि आप दिन भर किसी को फोन करते बैठे? है आपके पास सुविधा है आपके पास? नहीं नहीं, उदय होगा ही, ऐसी बात नहीं। देखो आपका प्रश्न है बंद है तो उदय होगा ही ना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अन्य प्रकृति रूप परिणामित होकर नष्ट भी हो जाती है, ऐसे बिना भोगे।
लेकिन ये प्रश्न है कि निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में वहां पर तो आहारक शरीर क्यों बांधेगा?
निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में आहारक शरीर नाम कर्म बांधता है, क्योंकि वहां शुद्ध उपयोग है तो वहां शुभ राग चल रहे कि नहीं अबुद्धिपूर्वक? अबुद्धिपूर्वक नहीं मानेंगे तो पूरा वितराग का मानना पड़ेगा शुद्ध उपयोग में। शुद्ध उपयोग ये तो द्रव्यानुयोग की टर्मिनोलॉजी है। करणानुयोग तो कहेगा वो जो कुछ है उसके विशुद्धि बढ़ गई है। विशुद्धि बढ़ गई है नहीं, क्या कषाय मंद हो गए, मंद हुए है, पूर्ण वितराग तो नहीं हुआ है। तो वहां यथा योग्य कर्मों का बंध चलता है। जैसे हमने देखा ना पहले गुणस्थान में कितने कर्म बनते हैं, फिर चौथे में गया तो 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया, परंतु बाकी की बंध रही है ना, और ऊपर चला गया और किसी कितनी प्रकृतियां बंध रुक गया, फिर और ऊपर चला गया। प्रत्येक गुणस्थान में यथायोग्य कितनी प्रकृति का बंध हो सकता है उसकी पूरी लिस्ट है, वो पढ़ लेना कभी, बंध विच्छित्ति याद करने जैसा है। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अभी हमने देखा था आहारक मिश्र की बात, फिर बाद में आहारक कायोग हो जाता है, और कारमान कायोग अभी अभी हमने पढ़ा था। कारमान कायोग कब होता है? विग्रह गति में मोड़ वाले गति है तभी होता है, मोड़ के पहले पहले। और कब होता है? संयोग केवली अवस्था में होता है। अब इसके गुणस्थान यहां हमने लिखे थे जो अभी हमने देखे हैं। वैसे वैकिरेक कायोग के बारे में एक बात यहां बतानी है। वैकिरेक कायोग देव और नारकियों के पर्याप्त अवस्था में होता ही होता है, परंतु और विक्रिया कौन कौन कर सकते हैं? तो बादर अग्नि का एक पर्याप्त जीव, बादर वायु का एक पर्याप्त जीव, और जो कर्म भूमि और भोग भूमि के मनुष्य और तीन इंच, इनके भी विक्रिया पाई जाती है। विक्रिया रिद्धि नहीं, विक्रिया रिद्धि वाले वो अलग, वो मुनिराज है विक्रिया रिद्धि वाले, परंतु इनके भी विक्रिया पाई जाती है। अब उसमें भी कर्म का जो है, जिनके पूर्व में उन्होंने वो वैकिरिक शरीर नाम कर्म आदि बांधा है, उनके वहां पर वैकिरिक कायोग पाया जाता है। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर की विक्रिया करते हैं, परंतु वहां उस समय में उतने काल तक उनके वैकिरिक कायोग पाया जाता है। मनुष्य तिर्यंचो में और ये एकेंद्रियों में, बादर अग्नि का एक पर्याप्त और बादर वायु का एक पर्याप्त जो, ये वैकिरेक का हाँ, भोग भूमि वाले भी और कर्म भूमि वाले भी, इनकी ये वैक्रिया का पर्याप्त उनके ही होगा। वो ये हो गई बात, हमने ये सब गुणस्थान देख लिए। यही कायोग में इतनी विशेषताएं हैं, इतने अलग अलग गुणस्थान है इसमें। अब मनोयोग में हम देखेंगे गुणस्थान। मनोयोग किसके होता है? तो संगी पंचेंद्रियों के। तो संगी पंचेंद्रियों में गुणस्थान कौन कौन से हो गए? मनोयोग हमने एक सामान्य मनोयोग देखेंगे, उसके भेद अभी नहीं देखेंगे। तो मनोयोग वाला कौन है? संगी पंचेंद्रिय। तो उसके गुणस्थान संगी पंचेंद्रियों को कहां से कहां तक हो गए मनोयोग वालों के? हाँ, सब कॉमन बता दो, 1 से 13। 13वें वाले को मनोयोग है कि नहीं है?
1 से 12
है, 13वें वाले को भी है,
लेकिन उसका उपयोग नहीं है।
उपयोग भी नहीं है और वो उपचार से है, परंतु योग क्या अर्थ होता है? मनोवर्गणा का वहां अवलंबन है, और द्रव्य मन भी है और वहां उसके अनुसार वहां कंपन भी है, और द्रव्य मन की रचना भी वहां बनती है। जैसे परम औदारिक शरीर का ग्रहण होता है, वैसे मन संबंधी भी परमाणुओं का ग्रहण होता है ऐसा भी, और हमारा जो वचन योग है वो मनोयोग पूर्वक होता है, और उनके भी वहां वचन योग है। दिव्य ध्वनि खिरती है ना, तो केवली के तो वचन योग है,
तो 1 से 13,
परंतु उन्हें में सभी प्रकार के चारों मनोयोग नहीं है। बीच वाले जो असत्य और उभय वाले उनके नहीं होते, तो सत्य और अनुभय मनोयोग, सत्य अनुभय वचन योग, ये दो दो मनोयोग और वचन योग होते हैं। बाकी हम हमारी बात करेंगे तो पहले गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक चारों ही प्रकार के मनोयोग और चारों ही प्रकार के वचन योग होते हैं। वचन योग में हम और एक देखना है, द्विइंद्रियों को भी लेना, तीन इंद्रियों चतुरिंद्रियों को भी वचन योग होता है, असंगियों के भी वचन योग है। इतनी बात यहाँ ख्याल में रखनी, उनके तो एकमात्र पहला ही गुणस्थान है। और अपर्याप्त अवस्था में ना मनोयोग होता है ना वचन योग होता है। इतनी बात आई समझ में, ये योग की बात हो गई। यही बात यहाँ दूसरे पुस्तक में 730 पृष्ठ पर भी लिखी है, जिसने वो पुस्तक जिनके पास है, ये दूसरा जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका का अपना यहाँ स्वाध्याय चला था ना अभी शिविर में, ये दूसरे भाग में 730 पृष्ठ पर ये सारी बताए हैं। और फिर दोबारा 740 पृष्ठ पर ये उसकी पूर्ण फिर दोबारा लिया है, उसमें गुणस्थानों में मार्गणाएं घटाई उन्होंने, तो वहां भी इसका विवरण फिर दोबारा आ गया। अभी है 3-4 मिनट, इसमें कोई किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछना।
ये समझा ना मैंने, बादर अग्नि का किस तरह से होता है?
अभी हमने समझा ना, ये बादर अग्नि का एक जीव है, बादर वायु का एक जीव है, वे विक्रिया करते हैं। तो कौन से जीव विक्रिया कर सकते हैं? तो जिनके पूर्व भव में वो वैक्रियक शरीर नाम कर्म अंगोपांग, अंगोपांग का प्रश्न ही वहां नहीं है, वैक्रियक शरीर नाम कर्म जिनका बंधा है और अभी जिनकी सत्ता में वो है पड़ा हुआ है कि जिसकी उद्वेलना नहीं हुई है, ऐसे जीवों को बादर वायु का एक अग्नि का एकों को विक्रिया होती है।
पर्याप्त
अवस्था, पर्याप्त अवस्था, बादर पर्याप्त जीव है। हाँ, विक्रिया जो करते हैं मनुष्य और तिरियंचों में भी ये विक्रिया करने की योग्यता पाई जाती है। यानी जैसे देव विक्रिया से नया शरीर तैयार करते और कहीं घूम कर आते हैं, वैसे मनुष्यों में और तिरियंचों में भी ऐसी विक्रिया पाई जाती है, कर सकते हैं। वो मिथ्या दृष्टि भी हो या कोई सम्यक दृष्टि भी, मुनिराज भी, एक ऐसा नियम है कि वो जिस काल में आहार कर रहे हैं उसी काल में वैक्रियक शरीर या विक्रिया नहीं कर सके। मुनिराजों की भी होती है, जिस काल में आहारक शरीर बनाया है ना उसी काल में विक्रिया नहीं करते। हो सकता है कि आहारक से आहारक बना के वापस आए और फिर उसके बाद वो विक्रिया करते हैं, परंतु एक ही समय में दोनों नहीं करते, ये बात है। ये भोग भूमि वाले भी मनुष्य तिरंचों में वो विक्रिया पाई जाती है। तो इस तरह से वैकरिक का योग होता है उतने काल तक, उस जाति के वो अवतारिक शरीर से ही वो विक्रिया करते हैं, परंतु उतने काल तक उनको वैकरिक का योग पाया जाता है उतने काल के। यानी ये एक्सेप्शन जिसको हम कहते हैं ना, बाकी तो अवतारिक का योग ही है इन जीवों को, और उनके भी वैकरिक मिश्र नहीं होता है। विक्रिया करने वालों को वैकरिक मिश्र नहीं है, हाँ अवधारिक का योग है और वैकरिक का योग है वहाँ।
तो उसमें जो विक्रिया रिद्धि होती है वो अलग है और ये अलग,
हाँ वो मुनिराजों को होती है। विक्रिया रिद्धि जो है वो मुनिराजों की होती है। अभी बादर वायु का एक अंक नहीं कहेंगे हम विक्रिया रिद्धि है करके,
तो इससे
उनकी विक्रिया होती है, बस इतना ही कहेंगे। ऐसे वो सहज योग्यता पाई जाती
है।
हाँ आपका प्रश्न है किसी को योग का काल कितना होगा, मिनिमम काल कितना होगा, जगन्य जिसको कहते हैं, और अधिक से अधिक काल कितना होगा?
हाँ।
अच्छा अच्छा आपका प्प्रश्न है एक जीव के एक साथ है, एक साथ तो एक ही योग होता है एक बार, परंतु किसी गुणस्थान में उसको कितने योग हो सकते हैं या मनुष्यों में कितने हो सकते हैं, ऐसा हम अलग अलग कालों में कितने हो सकते हैं उसकी तो पूरी लिस्ट हम कल देखेंगे, अभी क्योंकि आधा मिनट बाकी है। हम देखेंगे प्रत्येक गुणस्थानों में घटित करेंगे कि पहले गुणस्थान में इसमें से कौन कौन से योग हो गए, दूसरे में कौन कौन से हो गए, यानी वो फिर हमारा रिवीजन भी हो जाएगी और फिर पक्का हो जाएगा।
हाँ ये जो आपने बताया ना विक्रिय जो होता है तो वो क्या होता है, मतलब
विक्रिया करके उस जो वैक्रिय शरीर के साथ कहीं घूम के भी आता है, आप यहाँ बैठे और विक्रिया करके देव दर्शन करके आई सब जगह जाके, ऐसे हो सकता है। बादर वायु का एकों की जो विक्रिया होती है ना, अभी जो कुछ साइक्लोन विक्लोन होता है वो, तो उसकी विक्रिया होती है उसकी। अभी तो अपना विषय यहाँ समाप्त हो, कल फिर हम दोबारा देखेंगे। देखिए बहुतों ने मेरे को प्रश्न पूछा है कि अभी हमारी जो शिविर हुई थी ना समय ज्ञान चंद्रिका की 30 घंटों की, तब यहाँ वीडियोइंग हुआ था और उसकी अभी हमने डीवीडी भी बनाई। 30 घंटों की डीवीडी, 10 डीवीडी अवेलेबल है, एक डीवीडी में 3-3 लेक्चर्स है और वो अवेलेबल है, अभी हम साथ में लेके आए हैं। तो किसी को बहुतों ने प्रश्न पूछा ना, तो हर एक को अलग अलग बताने में मैंने बोला यहाँ बता दो। हाँ नहीं नहीं, देखो आपका प्रश्न है विक्रिया वैक्रियक शरीर करता है तो अकेले आत्म प्रदेश जाते हैं कि शरीर भी, शरीर है ना वहाँ वैक्रियक शरीर, वहाँ वो जो कुछ है नया शरीर बनाया है उसने, उसके साथ उसका गमन होता है। आत्म प्रदेश तो है ही उसके साथ, मूल शरीर भी है और आत्मा के प्रदेश भी है यहाँ पर, और आत्मा के प्रदेश उसमें भी लंबा है इलास्टिक जैसे, तो उसमें भी है और इसमें भी है, आत्मा तो एक अखंड है। वो विक्रिया से जैसा बनेगा, विक्रिया से कुछ भी बना सकता है, विक्रिया से कोई एनिमल का भी रूप ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, या वैसे भी वैसी विक्रिया हो सकती है। औदारिक शरीर है यहाँ पर, उस टाइम औदारिक का योग नहीं है। हाँ जिस समय एक ही योग है, एक टाइम दूसरा योग नहीं है उसको। अभी यहीं रुकते हैं, अभी बोलो 2400 भगवान।